8 जनवरी सन 1967 की पैथ क्लास पहली मीट का मध्यान्ह 12 जनवरी के हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखें। कौन से 3 धाम? सुखदाम, सुखदाम और सबसे ऊंचा शांति धाम। इनके अधिपति कौन कौन हुए? सुखदाम का मुखिया तीन पुरियां दिखाई गई हैं। नीचे की पुरी ब्रह्मापुरी, कौन से धाम की ओर? सुखधाम की ओर। और बीच में विश्वपुरी सुखधाम, और सबसे ऊपर शंकरपुरी शांति देवा शांति धाम की ओर। तो 3 धाम बुद्धि में याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, मना आत्म की स्थिति रहती है। सुखधाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, आत्मा तो शांत स्वरूप है ही, तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, लेकिन करना क्या है? कोई को बुखार आ रहा हो तो पहले वो बुखार से छुटकारा पाना चाहेगा, शांति चाहेगा, बुखार से मुक्ति चाहेगा या रसगुल्ला खाना चाहेगा? पहले मुक्ति चाहिए। मुक्ति माना शांति, फिर उससे ऊंची चीज सुख चाहिए। तो सुखदान के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी दुखधाम में हो। सुखधाम शुरू होता है आधा कक्ष के बाद। भगवान को कहाया जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर मान हेवन का रचयिता बाप। वो कोई है नहीं स्थापन करते, हेवनली गॉड फादर है स्थापन नहीं करते हैं। क्या स्थापन करते हैं? हेवन स्थापन करते हैं। हेवनली गॉड फादर है तो हेवन में रहने वाले देवताओं को रचता है। देवता पहले क्या थे? मनुष्य थे। नर से क्या बनाता है? नारायण बनाता है। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम स्थापन करता हूं, है? शांति धाम स्थापन नहीं किया जाता। शांति धाम तो है ही है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का देह शांत है, वो क्रिएट नहीं किया जाता। सुखधाम क्रिएट किया जाता है, सुखधाम की रचना रची जाती है। जो पहले नहीं था वो स्थापन किया जाता है। तो मैं सुखधाम का रचयिता हूँ, सुखधाम स्थापन करता हूँ। बाकी हार और जीत का खेल है। अभी माया रूपी रावण पर तो श्रीमत से जीत पाते हो। 2000 साल से तुमने माया रूपी रावण पर मनुष्य मत से और मन मत से हार खाई। अभी संगम युग में शेष से श्रेष्ठ बाप आया हुआ है तो मन मत और मनुष्य मत पर आप नहीं चलना। अगर आप चलेंगे तो फिर भी जन्म जन्मांतर हार खाते रहे। आधा कल के बाद जब रावण राशि शुरू होता है फिर उनको कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। गीता भागवत में भी अक्षर है अंधे धृतराष्ट्र की औलाद कौरव अंधे के। बाप खुद कहते हैं वो है अंधे की औलाद अंधे, उनके माँ बाप ही अंधे थे। धृतराष्ट्र भी अंधे और धृतराष्ट्र थी, उसने भी जानबूझ करके आंखों पर पट्टा बांधा हुआ। बातें कहाँ की है, इस समय संगम युग में जो भी गांधारी का पार्ट बजाने वाली है ऐसे नहीं कि उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। जब से एडवांस नॉलेज निकली तब से रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके पास सारी एडवांस नॉलेज आज से ही भेजी जाती रही। उन्हें अंदर से सारी बात का ज्ञान है लेकिन बाहर से दिखाने के लिए अहंकार के आधार पर आंखों पर पट्टा बांधा हुआ है जैसे जानबूझ के बांधा है। और ये है सोझरे की औलाद सोझरे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम काम के आधार पर पड़े हैं शास्त्रों। ये काम कहाँ किया है, संगम युग में काम किया है। धृतराष्ट्र राष्ट्र माना धन संपत्ति, जिसने सारी धन संपत्ति को अपने कब्जे में करके रखा, अपने बच्चों को लाडला समझ करके अपने बच्चों को सौंप दिया और पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दिया तो सब घर के बैठ गया, धारण करके बैठ गया तो उसका नाम क्या पड़ा, धृतराष्ट्र। और उसके अपोजिट में धर्म युद्ध लड़ने वाला, धारणाओं का युद्ध लड़ने वाला। युद्ध में धारणाओं के युद्ध में स्थिर रहने वाला, माया कितना भी हिलाए लेकिन वो हिलने वाला नहीं। देहं वा पातयामि कार्यं वा साध्यं, भले देह छूट जाए और छूट भी गई लेकिन देह छोड़ने के बाद भी उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और सूक्ष्म शरीर धारण करके भी वो आत्मा अभी भी सेवा कर रही है। तो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर तुम बच्चे युद्ध के मैदान में अभी स्थिर हो, ये भी बुद्धि में धारण करना है और समझाना है। अंधों की लाज जीवन घर का रास्ता बताना है क्योंकि सभी इसको भूल गए। इसको जो शांति धाम घर है उसको सारा भूले बैठते हैं, कहते भी हैं कि एक नाटक है परंतु इसकी लाखों वर्ष आयु हजारों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बनाई है, अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। कितना अंधा बनाई दिया मना, बाप आकर के जब ज्ञान सुनाते हैं तो जो सुनने वाले हैं वो पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं, उनको गहराई की बात का ज्ञान नहीं होता। तो अभी बाप सब बातें समझाए रहे। बाप को नॉलेज फुल कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाला हूँ। नारिश फुल का मतलब क्या लगा लेते हैं, भगवान तो सब कुछ जानता है, हर एक ही गट गट को जानने वाला है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है और अनगिनत कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर कितनी ना आत्माएं हैं, उन सबके घट घट को जानने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं। वो तो आकर के मुख्य मुख्य पाठधारियों के पाठ को खोलता है, उन मुख्य पाठधारियों के आधार पर जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं फॉलोअर, उनके भी नंबरवार पार्ट खुलते जाते हैं। बाकी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आत्माओं के तो पार्ट की खुलने की बात है ही नहीं। तो मैं घटघटवासी नहीं हूं, अंतर्यामी नहीं हूं। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं क्या कि इनके अंदर क्या बात चल रही है हम बता सकते हैं। सड़क पर मंजमा लगाने वाले देखे होंगे, कोई बच्चे को कोई आदमी को सुलाई देते हैं, उसमें सोल का प्रवेश कराए देते हैं और वो सोल बताती है बताओ इसकी जेब में क्या है, तो वो बताता है 100 का नोट है, 5 का नोट है, ये सिक्के हैं। तो ये तो रिद्धि सिद्धि की बातें हैं, ये अनपताल की रिद्धि सिद्धि से कोई स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता, ये तो चमत्कार वाली बातें हैं। चमत्कार भगवान आकर के नहीं करता, भगवान आकर के बाजीगर बनेगा क्या? भगवान बाजीगर नहीं है, वो तो यथार्थ बात आकर के बतलाता है कि कैसे ये दुनिया स्वर्ग बनती है और कैसे ये दुनिया नरक बनती है। मैं आ रहा हूं, जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं तो ये दुनिया उनके लिए स्वर्ग बनती है जो प्रैक्टिकल धारण करते हैं। और नरमाना मनुष्य जो कुछ पढ़ाते हैं जो भी सिखाते हैं उससे दुनिया नरक बनती है। नरक से क्या बनती है? नरक माना नरक करने वाला है, नरक नरक आप ही ऐसा नरक जो करे सो नरक। नर माना मनुष्य और भगवान जो करे सो स्वर्ग। भगवान क्या करता है? भगवान स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग का अर्थ क्या है? मन आत्मा का मन गया, आत्म की स्थिति में गया। भगवान बुद्धे है ही नहीं, भगवान को अपना रथ है, अपना रथ है ही नहीं, वो तो सदैव आत्मा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सदा शिव, वो सदैव शिव है, सदैव आत्मा है, कभी भी देहभान में आता ही, किसी रथ में प्रवेश भी करता है हम पर रथ में तो भी देहभान में आकर के कोई कार्य नहीं करता, देहभान में आकर के नहीं बोलता, देहभान में आकर के नहीं देखता, देहभान के वाइब्रेशन नहीं छोड़ता, जो कुछ करता है वो स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बनता है या बनाता है। कहते हैं मैं सुखदा का हूं, सुखधाम स्थापन करने वाला हूं। वो ऋषि सिद्धि वाले तो तुम्हारे अंदर की बातें सुनाई देते, परंतु नालिक का ये अर्थ नहीं है। किसी एक आदमी के अंदर क्या चल रहा है सो बता देना, ये तो बाप की ही महिमा है, जिसको कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। तो प्रैक्टिकल में आकर के ऐसा पाठ भी बजाता है, कोई उपकरण के द्वारा बजाता है। मनुष्य तो पहले से वो अंतर्यामी है। 8 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा भी, अरे वो अंतर्यामी है, एक एक की घटकी, एक एक के दिल की अंदर की बात जानता है, जानने का काम करता है। और कोई उसको काम नहीं है क्या कि एक एक के अंदर घुसे, एक एक के अंदर जा हर बात को जाए, एक एक के अंदर को बैठ करके जाने में क्या? अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे दुनिया में टीचर होते हैं ऐसे वो ही सुप्रीम टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? सामान्य टीचर नहीं पढ़ाते, सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं, वो रूहानी बात भी है। पढ़ाने वाला रूहों का बाप है, रूहानी टीचर भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वो बाप टीचर तो जिस्मानी होते हैं और मैं रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु। वो बाप टीचर सदगुरु अलग अलग होते, बाप अलग होगा, टीचर अलग होगा और सदगुरु अलग होगा। और यहाँ एक ही मुकर्रर रख के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी बनता है। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा क्या उसने ज्ञान का बीज बोया? अगर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का बीज बोया होता तो ब्रह्मा मुझसे क्यों जब उनको साक्षात्कार हुए? गुरु से पूछने की क्या दरकार थी? वाराणसी में विद्वान पंडितों आचार्यों के पीछे पढ़ने की, जाने की क्या दरकार थी? वो ज्ञान का बीज बोने वाला टीचर का स्वरूप नहीं हो सकता, वो तो ज्ञान को धारण करने वाली धरणी का रूप में है। धरणी को माता कहा जाता है। धारणा करने वालों में वो आत्मा सबसे तीखी है। तो धारण करती माता है कौन? ब्रह्म। और उसमें ज्ञान का बीज धारण किसने करे? कौन बाप? अंत में जब दबज रह से हार गए तो ब्रह्मा अपने साक्षात्कारों का रहस्य पूछने के लिए अपने भागीदार के पास गए। कलकत्ते और भागीदार में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके उनके साक्षात्कारों का पूरा अर्थ समझा दिया, उनको भी समझ में आ गया। तो वो बाप भी है उसी स्वरूप के द्वारा। दो ही आत्माएं शक्ति रूपी रंगमंच पर विशेष पाठ बजाने वाली है। हीरो हीरोइन कहो, शक्ति रूपी गाड़ी के दो पहिए कहो, राम और कृष्ण वाली सोल मृदुल पाठ बजाती है, माता का पाठ बजाती है, और राम वाली आत्मा बाप का पाठ। इसलिए मुर्गियों में कभी ऐसे कहा गया राम बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बाप को कहा जाता है? क्या कहा गया? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ऐसे भी बोला ब्रह्मा को तो बाबा बेबी कहते, मन बुद्धि से बेरी बुद्धि आत्मा थी। जितना शिव बाबा ने उनके मुख से बोल दिया बस उतना ही समझा, उसके आगे उनकी बुद्धि नहीं चली। तो दुनिया में बाप टीचर सदगुरु अलग अलग होते हैं और यहाँ एक ही पर्सनालिटी के द्वारा सुप्रीम सोल बाप बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और सदगुरु भी बनता है। करके कोई कोई बाप टीचर भी होते हैं दुनिया में, बाप भी होता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला, टीचर भी होता है, परंतु गुरु तो हो नहीं सकता। और यहाँ यहाँ बाप भी बोई, टीचर भी बोई, गुरु भी बोई, तथाकथित ब्राह्मण इन बातों को नहीं जानते। कौन से ब्राह्मण? दुनियावी ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया में कुभवंशा वाली ब्राह्मण है वो इस बात को समझते नहीं है। वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा ही बाप था, ब्रह्मा ही टीचर था और ब्रह्मा ही सदगुरु था, हमारी सदगति करके गया है। अरे सदगति जो करके जाएगा उसका हार्ट फेल होगा। सदगति करने वाले ब्रह्मा को याद करेंगे तो उनकी भी क्या गति होगी, उनको भी अकाल मौत शरीर छोड़ना पड़ता है। और ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा के स्वरूप को याद करते हैं, सदगुरु मानते हैं, उनका भी हाल क्या होता जाता है, वो भी अकाल मौत में शरीर छोड़ देता है। तो बाप कहते हैं ये बात लगती नहीं है कि मैं एक रूप के द्वारा दूसरे रूप के द्वारा दूसरा पाठ, तीसरे रूप के द्वारा तीसरा पाठ बजाऊं, नहीं मैं तो एक ही रूप के द्वारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। वो गुरु तो मनुष्य गुरु है, यहाँ तो यह है सुप्रीम रूह, वो गुरु है और ये सतगुरु है। कुछ लोग कहते हैं सतगुरु एक सतगुरु अकाल मूर्त, एक सतगुरु ही है जिसको काल खा नहीं सकता। और जो मूर्तिमान भी होते हैं, मूर्त माने साकारी और अमूर्त माने आकारी या निराकारी, जिसकी मूर्ति न हो तो वो सतगुरु अकाल मूर्त है और एक ही है। एक है सतगुरु और बाकी सब है गुरु। सतगुरु एक है, सत्य माना सच्चा, तो एक है सच्चा तो बाकी सब कैसे हो गए, सारे झूठे हो गए। भले वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्रोध में आ जाएंगे, लेकिन उनके सामने हिस्ट्री रख दी जाए दुनिया की, ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री जो मनुष्यों के गुरुओं बनाने से जो हिस्ट्री हमारे सामने आई है उससे दुनिया नीचे गिरी है या ऊपर उठी है। जो दिव्य गुण है वो मनुष्यों में बढ़े हैं या घटे हैं, घटते हैं, आखिरी गुण बढ़ते हैं। तो वो सदगुरु हुए या झूठे गुरु हुए, झूठे गुरु हुए। यहाँ तो सुप्रीम रूप है परमपिता परमात्मा, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं कि सभी आत्मा परमात्मा है, ये भी कोई समझते नहीं। कैसे हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, कहा अर्जुन ने कहा बस 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 करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता, हम तेज नहीं सहन कर सकते। ये सब बातें सुनी हुई है तो समझते हैं परमात्मा ऐसा तेज हुए होगा। अरे जैसे आप और सब आत्माएं ज्योति बिंदु होती है वैसे मैं भी ज्योति बिंदु आज के पास आते थे तो भी साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत देर है, हम सहन नहीं कर सकते। तो जो सुना वो बुद्धि में बैठा हुआ है, बड़ा रहता है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं तो मैं उनकी भावना को पूरा कर देता हूँ। हनुमान को याद करते हैं, उनकी भावना को पूरा करने के लिए हनुमान का साक्षात्कार कराया देता हूँ। माँ काली को याद करते हैं तो माँ काली का साक्षात्कार कराया देता हूँ। गणेश को याद करते हैं तो गणेश भगवान के रूप में साक्षात्कार कराया देता हूँ। भावना की पूर्ति होती है तो भक्तों को खुशी हो जाती है। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम हम पहुंच रहे, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई साक्षात्कार से जा नहीं सकते। नारद का भी मिसाल, वो शिरोमणि भक्त का आया हुआ है। क्या नाम रखा है? शिरोमणि भक्त का नाम क्या रखा? नारद। नार माना जल, दा माना देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता था। ध्यान बजा बजा के कहता रहता था चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ, और खुद नरक की दुनिया में घूमता रहता था। तो दूसरों को कोई ज्ञान दे और खुद ज्ञान को धारण न करे तो उसको भक्त कहेंगे या ज्ञानी आत्म कहेंगे? भक्त आत्म कहेंगे। इसलिए बोला भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम। रावण जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। प्रकांड विद्वान था लेकिन कर्म कैसे थे है? ऐसे भ्रष्ट कर्म थे कि पराई स्त्री को चुराने के प्लान बनाता रहता था, चोरी करके भी ले जाता था। अब पराई बहु बेटियों को चोरी करना ये ज्ञानी आत्मा का काम है क्या? नहीं। ज्ञानी आत्मा चोर चकार नहीं हो सकती। ज्ञानी आत्मा तो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली हो, ऐसे कर्म करती है और दूसरों से ऐसे कर्म कराती है कि न दूसरे दुखी हो और न स्वयं कभी दुखी हो। तो भक्त शिरोमणि जो नारद आया हुआ है उनसे पूछा गया कि तुम लक्ष्मी को भर सकते हो? तो कहा हाँ, हम लक्ष्मी को भर सकते हैं। जहां स्वयंवर हो रहा था वहां पहुंच गया। लक्ष्मी वरना वर माला लिए हुए घूम रही थी, तो जहां जहां लक्ष्मी जाती थी वहां वहां जाकर के सामने खड़ा हुआ। सामने जाके खड़ा हो जाता था, उसको यही पता नहीं था मेरा मुंह बंदर के जैसा बना दिया गया। तो लक्ष्मी झिझक के दूसरी तरफ चली जाती थी, वो फिर जाके दूसरी तरफ खड़ा हो जाता था। तो ये नारद का मिसाल है, उनसे कहा तुम अपनी शक्ल देखो तो फिर ज्ञान करके भरे हुए लोटे में अपनी शक्ल देखने लगा। तो देखा बंदर जैसी शक्ल है। ऐसे दुर्गति को पाए हुए फिर मुक्ति कैसे पावेंगे? भक्तमाला भी होती है, ज्ञानियों की माला भी होती है और विष्णु की माला भी होती है। उनकी माला माना विजय माला जो पूजी जाती है, रुद्रमाला ज्ञानी की आत्मा की माला, रुद्राक्ष के मणक होते हैं, उन रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने हुए होते हैं, कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में दस मुख, कोई में चौदह मुख। वो मुख है यादगार कि इतने इतने मुख ने प्रवेश किया है बोलने के लिए, इतनी आत्माओं ने मुख धारण किया है ज्ञान सुनाने के लिए। तो वो रुद्राक्ष के मन के मुख लेने की यादगार है, तो जरूर उसमें कोई मन का ऐसा होता होगा जिसमें सिर्फ सुप्रीम सोल ही प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, वो मन का विरह मिलता है। कोई मन के ऐसे जो दो बातें करते हैं, चार बातें करते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो चौदह चौदह तरह की बातें करते हैं। माना जितनी प्रवेश करने वाली आत्मा उतने तरह की बातें सुनाने लग पड़ती है। तो अनेक मत वाली आत्माएं होंगी तो रावण का यादगार दिखा दिया। रावण को कितने मुख दिखाते हैं? दस मुख दिखाते हैं। दस मुख का मतलब वो एक मुख से एक बात नहीं करता था, दस मुखों से दस प्रकार की बात करता था। तो उसके कौन से मुख का डायरेक्शन माना जाए, किस डायरेक्शन पर चला जाए? एक आदमी आज एक बात करता है, कल दूसरी बात करता है, परसों तीसरी बात करता है, तो झूठा हुआ है या सत्य हुआ?
झूठा।
भक्ति मार्ग में कहा झूठ की झूठ है। इन रावण के मुखों से आती है भक्ति, अनेक प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं, और भगवान आकर के एक मुखर रथ के द्वारा एक प्रकार की ही बातें बताते हैं। वो बातें कभी पलटती नहीं है। तो बात समझाते हैं, भक्त भी सब नंबर वाले। तुम बच्चों को माया से बड़ा खबरदार रहे, माया ऐसा उल्टा काम बराबर करा लेती है जो बाद में रोना पड़े। ऐसे रोते हैं कि भगवान आया परंतु हम वर का नहीं ले सके, फिर भी भगवान के आने के बावजूद भी हम प्रजा में दास दासियां जाकर के बनेंगे। भगवान आया, हमने जाना, पहचाना, सरेंडर भी हुए, फिर ऐसा क्या हुआ जो दास दासी बन पड़ते हैं? ऐसी क्या कथा कहानियां बन गई? अरे एक बात की मत पर न चल करके और मनुष्यों की मत पर या मन मत पर चल पड़ते हैं तो ऐसे फिर दास दासी बनते। इसलिए बाप पहले ही समझा देते हैं ताकि फिर पीछे पछताना न पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे योगादि से पाप भंग होते रहेंगे। आत्मा तत्वप्रधान सतयुग होती है, पहले युग में आत्मा तत्वप्रधान बनती है, फिर क्या होता है इसमें खाद पत्ते पत्ते तमो प्रधान बन जाते हैं। ये खाद कहां से आती है? सतयुग की जो आत्माएं थी 9 लाख आत्माएं थी उनमें कहां से खाद पड़ गई? ऊपर से आत्माएं आई और वो ढेर की ढेर आत्माएं ऊपर थी। पहले जन्म में सिर्फ उसी 9 लाख और दूसरे तीसरे चौथे आठवें जन्म में सतयुग में ढेर सारी आत्माएं ऊपर थी। तो उन आत्माओं को उतरने से ढेर आत्माओं के संग के रंग में आने से आत्मा जो 9 लाख वाली आत्माएं थी सतो प्रधान वो भी सतो सामान्य बन पड़ती है। त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं उतरती है, چاند کی تو ویلو بہت کم ہوتی ہے. سچو کو کہا جاتا ہے سونے کے سامان, ریتا کو کہا جاتا ہے چاندی کے سامان, اور پھر دواپر میں تو آتماؤں کی سنکھیا اور زیادہ اترنے والوں کی بن جاتی ہے, کیونکہ تریتا کی انت کی آبادی صرف ہوتی ہے 10 کروڑ, اور دواپر میں جو اوپر سے دھرم پتائیں آتے ہیں ابراہیم بدھ کرائسٹ وغیرہ وغیرہ, اور ان کے جو فالوورس آتے ہیں ڈھیر کے ڈھیر, ان کے سنگ کے رنگ میں آنے سے وہ دھرم سب نیچی سے جا جاتے ہیں, تانبے کی کھاد پڑ جاتی ہے, کلیو میں لوہے جیسی آتم کروڑوں کی تعداد سینکڑوں اترتی ہے اور سنگ کا رنگ لگاتی ہے, ان کے سنگ کے رنگ سے سب کالے سمو پردھان بن جاتے ہیں. جو 9 لاکھ سے ساتمائیں تھی, کوئی ایسا ٹائم تھا کہ وہ 9 لاکھ ستارے چیتنیہ ستارے ساری شکتی پر گیان کی روشنی چمکائے رہے تھے, پھیلائے رہے تھے, وہ سب کالے سمو پردھان بن جاتے ہیں. سب انت میں پرماتما باپ اس شکتی پر آتا ہے, بتاتے ہیں کہ میں آئرن ایج جب پوری ہوتی ہے تب آتا ہوں, گولڈن ایج, سلور ایج, کاپر ایج اور آئرن ایج. ابھی آئرن ہو ایج ہو پھر گولڈن ایج میں جانا, پیور بننے کی بغیر آتما جائے نہیں سکے گی. سونے کو پیور کرنے کے لیے بہت تیکھی اگنی جلانی پڑتی ہے, دیوی اگنی سے سونا گلتا نہیں ہے, تیور اگنی چاہیے. یہ بھی یوگ آگنی ہے, یوگ آگنی میں اگر دوسری دوسری آتماؤں کی یاد آتی رہی تو پاپ کرم بھسم ہونے والے. یہ پاپوں کی کھاد ہے, پاپ آتماؤں کے سنگ کے رنگ سے جو کھاد پڑی ہے وکاروں کی, کام کروتھ لو مو اہنکار, یہ نشٹ ہونے والے نہیں ہے دھیمی اگنی سے. اس لیے تیکھڑ یاد چاہیے, تیکھڑ یاد مانا ایک ہی لگن میں مگن. دوسرے کی بھی وچار یاد آئی اور پھر بھاگ پڑنا شروع ہو جاتی ہے, تو سچ میں پیورٹی بنتی ہے. جہاں پیورٹی ہوتی ہے وہاں پیس آف پراپرٹی بن جاتی ہے. یہاں پیورٹی نہیں ہے تو دنیا میں پیس بھی نہیں ہے اور پراسپیرٹی بھی نہیں. تو دیکھو رات دن کا فرق, جیسے رات میں اندھیرا ہی اندھیرا اور دن میں سو جرا ہی سو جرا. تو بات سمجھاتے ہیں یہ بچپن ابھی بھول نہیں جانا. کیوں؟ باپ آ کر کے جو گیان سناتے ہیں, جو بیسک نالج دیتے ہیں, بچوں کو پیار سے پڑھاتے ہیں, پیار سے برہما کے دوارا پالنا دیتے ہیں, یہ بچپن بھول نہیں جانا. ایسا نہ ہو کہ اوروں کے سنگ کے رنگ میں آ کر کے شوٹنگ پیریڈ میں تم میروں کو بالکل بھول جاؤ. میری سہیوگی پوجا بننے کے بجائے اور ہی ویروی بن جاؤ, کیونکہ میری یادگار جگن ناتھ پوری میں ٹونٹا دکھایا جاتا ہے, کوئی سہیوگی نہیں رہتا. تو مایا کڑی پریکشا لیتی ہے, ساری دنیا کا ماحول ہی چینج کر دیتی ہے, اتنا ماحول بگاڑ دیتی ہے کہ جو بچے میرے بچے وہی میری گلانی کرنے لگ پڑتے. ابراہیم بدھ کرائسٹ آ کر کے ڈائریکٹ گلانی نہیں کرتے, میرے بچے میری سب سے زیادہ گلانی کرتے. تو یہ بچپن کے دن بلائے نہیں دینا. باپ نے تم بچوں کو ابھی اڈاپٹ کیا ہے, مکھ سے تم کو مکھوشا والی بنایا ہے, برہما دوارا اڈاپٹ کرتا ہوں, یہ اڈاپشن ہے. बाप स्त्री के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता है, तो ये भी बाप है। ब्रह्मा द्वारा तो बच्चों को अडॉप्ट किया है मुख के द्वारा, जैसे बाप होते हैं पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं फिर बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे भी क्रिएटर बनते हैं बाप बनते हैं। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है उसको रचना नहीं कहेंगे, ये भी बाप अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। बाप कहते हैं तुम हमारे वो ही बच्चे हो जिनको कल पहले अडॉप्ट किया था। जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं उन बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। यहां पेट के बच्चे नहीं है, कैसे बच्चे हैं? एडॉप्ट किए हो, एडॉप्ट करना माना स्वीकार करना कि तुम मेरे बच्चे हो। ऊंच से ऊंच बाप से ऊंच वर्षा मिलते हैं, ऊंच से ऊंच है ही भगवान तो कौन सा वर्षा देंगे। ऊंच से ऊंच वर्षा है गति और सदगति, गति माना शांति धाम और सदगति माना सुख धाम। तो देखो एक सेकंड में फिर ब्रह्मा से विष्णु बन जाते, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, अभी तुम सत्यु के मालिक बन रहे हो। क्या कहा? दो मालिक की बात बताई, एक विश्व के मालिक और एक सत्युग के मालिक। सत्युग के मालिक कौन? जो ब्रह्मा सरस्वती जो राजस्व की आत्माएं हैं वो हल्की पढ़ाई पढ़ती है बेसिक नाच वाली, शरीर रहते रहते इसलिए वो अपने शरीर से विश्व के मालिक नहीं बनती। राई का मालिक बनती है सत्युग का मालिक, और उनको जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो विश्व के मालिक बनते हैं। जो विश्व के मालिक बनते हैं वो डायरेक्ट मेरे द्वारा बनते हैं, तो प्रिंस सोलह आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है उसके द्वारा बनते हैं। क्यों ये अंतर क्यों पड़ गया है? ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं जो ज्यादा धारणावान है, धारण करने की शक्ति वाली है, वो सत्युग के मालिक बने और उनको जन्म देने वाले विश्व के मालिक बन गए। विश्व का मालिकाना प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े आदमी हुए, महान महान पुरुष हुए, उन्होंने कितना कितना ताकत लगाई। नेपोलियन, मुसोलिनी कितनी ताकत लगाई लेकिन विश्व के मालिक नहीं बन सके, क्योंकि उनका रास्ता गलत था। वो बाहुबल से विश्व के मालिक बनना चाहते थे। हमारे भारत में तो गाया जाता है विश्व विजय कलर के दिखला दे तब हो गए पर हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जो झंडा है वो तीन रंग के कपड़ों का है, वो कपड़ा कहीं विश्व विजय नहीं करके दिखलाता है। कपड़ा माना शरीर, आत्मा शरीर रूपी कपड़े को धारण करती है, तो तीन आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये शिव की त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। इन तीन मूर्तियों के द्वारा वो निराकार शिव सारे विश्व के ऊपर बादशाही प्राप्त कराता है युग बल के द्वारा हम बच्चों को। तो ब्रह्मा की सोल सरस्वती की सोल सतयुग में बादशाही प्राप्त करती है और तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, ये अंतर क्यों पड़ जाता है? है सोल में तो बाप की सोल सुप्रीम सोल प्रवेश ही करता है ब्रह्मा में, इससे ज्यादा डायरेक्ट और क्या होगा?
मुरली का अत्याचार, मुरली का अत्याचार गहरे में नहीं गया,
تو پڑھانے والا تو اسی کے اندر تھا
نہیں
باپ کے روپ میں پاٹ میں
اچھا چلو ماں کے روپ میں پاٹ تھا سوال تو یہ ہے کہ جو ماں کے روپ میں پاٹ تھا اس میں سپریم چول پڑھانے والا تھا لیکن وہ ستیو کا مالک کیوں بنا وشو کا مالک کیوں نہیں بنا ہاں سب کچھ ارپن بھی کیا اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیا
جانے کے لیے
سر میں جانے کا پرساد کیا ہم میں جانے کا پرساد کر رہے
ہیں
مول بات یہ ہوئی نہیں 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 مول بات یہ ہوئی کہ ماں جو ہوتی ہے تو بچوں کے پربھاؤ میں آ جاتی بچوں کی مت پر چل پڑتی ہے برہما نام تھا نا برہم ماں بڑی ماں شکتی کی بڑے تھی بڑی ماں دنیا میں ہوتا ہے ماں کا ہوتی ہے جب بچی ہے تو باپ کے ادھیکار میں جب شادی ہو جاتی ہے تو پتی کے ادھیکار میں رہتی بچے پیدا ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں خدا نہ خاصا پتی نے شریر چھوڑ دیا تو بچوں کے آدھین ہو جاتی تو ماں کا سوبھاؤ سنسکار ہی ایسا ہو جاتا کہ وہ آدھین ہو جاتی باپ 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 کے روپ میں اگر باپ ہے اور رچنا رچنا ہے تو باپ کبھی اپنی رچنا کے آدھین نہیں ہوتا ہے تو ماں یج کے آج سے ہی جو فرکشن پڑا تھا اس میں وہ رام باپ اور رام کی فالوور آتمائیں جو سوریوشی آتمائیں تھی وہ چھوڑ کر کے چلی گئی اور جو ودیشی آتمائیں تھی انہوں نے ماں کے اوپر آدھپتی جمع لیا اپنے کنٹرول میں لے لیا اپنے طریقے سے چلاتی رہی تو منشیہ مت پر چل کر کے درگتی ہوتی ہے یا سنگتی ہوتی ہے درگتی ہوتی درگتی کا مطلب ان کا پد جو ہے وہ نیچا ہو گیا ستیو میں جا کے راگ ہستی کے روپ میں جنم لیں گے ستیو کے نارائن بنیں گے لیکن وشو کے مالک نہیں بنتے تو راگ جن کا فرق ہے تم ستیو کے مالک بن رہے ہو ابھی سمپورن نہیں بنے ہو بن رہے تم ابھی روحانی سیوا کرتے ہو اس لیے تم بہت اونچ ہو شیو بابا بھی پتیتوں کو پاور بناتے ہیں تم بھی پتیتوں کو پاور بناتے ہو باپ کے سہیوگی بنتے ہو راون نے کتنا نالائک بدھی بنائی ابھی پھر باپ لائک بنا کر وشو کا مالک بناتے ہیں ایسے باپ کو پھر پتھر میں بستر میں ٹھکر میں کیسے ڈال دیتے سر میں آپ بتا دیتے تو پتھر میں پتھر کی پوجا کرتے ہیں پتھر کو بھگوان سمجھ لیتے ہیں تو پتھر میں بیاتی ہوا نا چکر میں مٹی کے ڈھیرے میں بھگوان بیاتی سمجھتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کی شوٹنگ کہاں ہوتی ہے کیسے جو پتھر وسیع منشی ہیں جان کی گہرائی کو اشارے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں ان میں بھی بھگوان کو ویاپک سمجھ لیتے ہیں کر جو تھوڑی سی مایا کی ٹھوکر لگے اور ٹوٹ جائے جان میں سے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں اب جانی بن جاتے ہیں ایسوں کو بھی بھگوان سمجھنے لگ پڑتے ہیں بستر بھی سمجھ دیوار جو جان کے راستے میں دیوار بن کر کے اڑ جاتے ہیں نہ خود آگے بڑھتے ہیں نہ دوسروں کو آگے بڑھنے دیتے ہیں جیسے مایا بیٹی کا مثال ہے مایا نہ خود باپ کو پہچانتی ہے گانداری بن کر کے آنکھوں پر پٹا باندھ لیتی ہے اور نہ دوسروں کو باپ کا سوروپ پہچان میں لانے دیتی تو جان کے راستے میں دیوار بن کر کے کھڑی ہو گئی نا دنیا میں کوئی دیوار بہت پرسدھ ہے چین کی دیوار कौन सा धर्म खंड है? बौद्ध ही धर्म खंड। सबको बुद्ध बनाई देती, जितने भी धर्म संपदाए हुए हैं, पुराने पुराने भी, उन्होंने सबसे जाती बुद्धू कौन बन गए? किनकी राजाई सबसे कम चलती है? हैं बहुत पुराने, लेकिन राजाई उनकी बहुत थोड़े समय चलती है। कौन से धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म। माया ऐसा बुद्धू बनाई देती है। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा, पहले भी ऐसे ही हुआ था, और ये जो शूटिंग पीरियड चल रहा है, इस शूटिंग पीरियड के समाप्ति में फिर भी माया बुद्ध बनाई। अभी ड्रामा प्लान अनुसार आया है, तुमको समझाता हूं, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे कल पहले समझाया था वैसे अभी समझाता हूं। बाप आने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते। ऐसे नहीं कि 5000 साल पहले जल्दी आ गया था और अभी इस कल्प में देरी से आऊंगा, नहीं, जिस सेकंड पहले आया था उसी सेकंड अभी दिया था। जैसे बाबा को री इंकारनेशन है तो बच्चों का भी री इंकारनेशन होता है, अवतरित होती हूँ आत्मा यहाँ आकर के फिर साकार में पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है अवतार, या ऊपर से नीचे पाठ बजाना। बाप का ये अलौकिक दिव्य जन्म, तुम्हारा पहला जन्म दिव्य होता है और बाद में गर्भ से जन्म लेते हैं। जो भी मनुष्य आत्मा है, पहला जन्म दिव्य जन्म होता है, कोई भी प्रवेश करके आत्मा सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। बाद में हर एक आत्मा नीचे उतरती जाती है, दुख का पाठ शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण को तो माता के गर्भ से जन्म मिला। बाप खुद कहते हैं मुझे भी सृष्टि पर आकर के प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, माना 5 तत्वों से बने पुतले का आधार जब तक मैं नहीं लेता हूं तब तक मैं अपना कार्य नहीं कर सकता। मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, ये मुकर्रर तन है। कौन कहता है? कोई ये धीरे करे, देखो संसार की मुरली में तो ये लिखा है, क्या क्या लिखा है कि ये मुकर्रर तन है। तो ब्रह्मा का तन मुकर्रर तन हुआ ना, मुरली बोल रही है। अरे मुरली बोल तो रही है लेकिन कहते कौन है? ब्रह्मा के मुख से कहने वाला किस रूप में कह रहा है? बाप के रूप में कह रहा है। तो ब्रह्मा तो माँ का रूप है, वो बाप का रूप तो है ही नहीं। बाप का रूप होता तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्ता दे कर दिया जाता, सुखदान का वर्ता दे कर दिया जाता। मुरली में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, तो स्वर्ग की स्थापना हुई द्वारा, द्वारा माने विधि। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना ही नहीं हुई वो बाप का रूप नहीं हो सकता, वो माँ का रूप था। इसलिए हम बोला बाप खुद कहते हैं यह मुकर्रर तन है, यह कहते कि किस तरह इशारा किया, लक्ष्मी नारायण का चित्र बाजू में रखा होता था उस तरफ कहा यह मुकर्रर तन है, दूसरे कोई में कभी आते ही नहीं है। नारायण के तन में आते हैं जो लक्ष्मी नारायण बनता है, ब्रह्मा में नहीं आते क्या? 108 बच्चों में नहीं आते क्या? आते हैं लेकिन हाँ सदा काल के लिए पूरा कार्य संपन्न करने के लिए नहीं आते। हाँ, इन बच्चों में कब मम्मा बाबा आ सकते हैं मदद करने के लिए, तब अन्य बच्चे भी आ सकते हैं, आगे हमको भी बुला देते, छत्तीस प्रकार का भोजन बनाते थे, ये बच्चे भी जानते हैं। आपस में ये बच्चे सारा दिन बहसते रहते थे।
पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में
हाँ
भूकंप आया है,
हाँ
उसी के बेहद में कहा चली गई,
बेहद में भी कुछ न कुछ हुआ होगा, तो ब्राह्मण बच्चों में एडवांस में भूकंप आ गया होगा, बहुत से हिले डुले होंगे। पहले भी बाबा ने बोला था, अभी ब्राह्मणियों को किसी को कहे कि तुम्हारा ट्रांसफर होना है तो कोई हिलती नहीं है अपने जगह से, अब तो वाणी में बोला, लेकिन बाबा ने बोला कि आगे चल करके तुम सब ब्राह्मणियों का ट्रांसफर करेंगे। तो ये काम की शुरुआत एडवांस के बच्चों से होगी या बेसिक नॉलेज में जो विद्यालय खुले हुए हैं वहां के टीचर से होगी?
एडवांस
पहले शुरुआत एडवांस से होगी, फिर बाद में वहां भी ट्रांसफर होंगे, इसलिए इशारा दे दिया कि ऐसे नहीं समझना ये आखिरी समर्पण समारोह है, अभी फिर दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगे। तो जब ट्रांसफर किया जाए जिनका मोह लग चुका है तो हड़कंप तो आता है ना, टीचर्स के साथ जिनका मोह लग गया है, टीचर्स का जिन स्टूडेंट्स में मोह लग गया है और इसको अचानक तोड़ दिया तोड़वाया जाए तो क्या हाल होगा? वो माना पृथ्वी धरणी, कंप माना कंपायमन, वो दुनिया वाले तो स्थूल धरणी को धरणी मानते हैं, लेकिन यहां तो भक्ति मार्ग में कहते हैं धरणी माता, भारत के लिए क्या कहते हैं भारत
माता,
तो जरूर कोई माता का रूप रही होगी ना, तो धरणी जब हिलती है तो धरणी के ऊपर जो संगठन रूपी मकान और किले बने हुए होते हैं वो संगठन रूपी किले सारे गिर पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। हाँ जी,
शिव का शंकर के ऊपर सवाल करेगा,
करेगा क्या करता है, बैल के ऊपर सवारी करता है, बैल कौन है? ब्रह्मा है बैल, ब्रह्मा की सोल अभी किसके ऊपर सवारी कर रही है? सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो गुंजार राज्य में, और बीज रूप स्टेज में होती है तो शंकर में प्रवेश करती है, इंटरफियर करके बोलती रहती है, शिव की सोल भी तो ब्रह्मा की सोल भी, तो मुरली में बताया है कि शंकर ऐसे छलांग लगा के बैल पर सवार होता है, माना हाई जंप लगाएगा, क्या हाई जंप लगाएगा, एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना पुरुषार्थ में, और एक होता है उड़ना, और एक होता है हाई जंप लगाना, तो पुरुषार्थ में हाई जंप लगाएगा और ब्रह्मा के ऊपर बैल के ऊपर सवार हो जाएगा।
सवार करना है आपको कंट्रोल करना होगा,
हाँ
सवार करना है आपको कंट्रोल करना,
कंट्रोल करना, हाँ जी सवारियाँ दिखाई है ना, गंगा को घड़ियाल की सवारी दिखाई है, कार्तिकेय को मयूर की सवारी दिखाई है, शंकर जी को बैल की सवारी दिखाई है, गणेश जी को मोह की सवारी दिखाई है। अच्छा, इन बातों के सबके लाक्षणिक अलंकारिक अर्थ है, भक्ति मार्ग में गुरुओं ने सीधा सीधा बता दिया कि हाँ चूहे की सवारी होती होगी, अब इतना बड़ा पेट वाला चूहे में बैठेगा चूहा तो मर जाए, जो घरों में खोखला कर देते हैं चूहे होते हैं ना घर के अंदर ही बिल बना बना के नीचे से सारा खोखला कर देते हैं,